अभी 11:17 हुए हैं, मैं हुसैनी हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह प्रोग्राम कम से कम रीस्टार्ट आगे भी चलता रहेगा इंशा अल्लाह। कैलिफोर्निया में 11:17 हुए हैं, यह रीस्टार्ट का 6th एपिसोड है। पिछले 5 एपिसोड्स में हमने समझाया कि हमारे सामने एक बहुत ज़रूरी विषय है। हमने रूमी मौलवी की एक कविता से शुरुआत की थी हाथी के बारे में, और उसके ज़रिए हमने धर्मों की फितरत को समझाया। फिर हम सूफिज़्म नाम के नज़रिए को इस चर्चा में खींच लाए। ये सब इसलिए किया गया ताकि हम अंत में इस कविता की व्याख्या पूरी कर सकें। मौलवी रूमी के 3 शेर वर्सेस हैं जिन तक अब हम पहुँचे हैं, मतलब हम 15-20 शेरों से गुजरे ताकि इन 3 तक पहुँच सकें। तीसरी लाइन में एक शब्द है जिसने हमें मजबूर किया कि हम कुछ वजाहत एक्सप्लेनेशंस दें। मैं अब मौलवी के 3 शेर पढ़ूंगा। उनका नज़रिया तमाम वाइज देने वालों और स्पीकर्स की तरफ था, और मौलवी दुनिया के सभी लोगों से कह रहे हैं अपनी सांस थाम लो ताकि तुम उनसे सुन सको जो ज़िंदगी फूंकते हैं। इसका मतलब है बकवास बंद करो ताकि तुम उनसे सुन सको जो समझते हैं, वह जो न ज़ुबान पर आता है न ही बयान में। मतलब यह चीज़ जिसके बारे में मौलवी बात करना चाहते हैं उसे भाषा या बोलचाल में कैद नहीं किया जा सकता। अपनी सांस थाम लो ताकि तुम उस सूरज से सुन सको, वह जो न किताबों में आता है न ही खिताब में। यह चीज़ जो मौलवी कहते हैं मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, वह किसी किताब में नहीं है, वह दुनिया में कहीं नहीं है। अपनी सांस थाम लो ताकि रूह तुम्हारे लिए सांस ले। तैरने वाले को नूह की कश्ती में छोड़ दो। यहाँ रूह स्पिरिट शब्द मौलवी के नज़रिए में एक बहुत अहम पॉइंट है। हमने और भी कई चीज़ें समझाईं, मिसाल के तौर पर मिस्टिसिज्म या सूफिज्म इवॉल्व विकसित नहीं होता, यह शुरुआत से ही मुकम्मल और इवॉल्व्ड था। यह धर्म रिलीजन है जिसे पूरा होना है, और साइंस को भी पूरा होना है। शायद 100 अलग अलग लोगों से 100 सवाल आए हैं, और यह बहुत दिलचस्प है कि हर धर्म के लोगों ने पूछा है सर तो असली धर्म क्या था, आप क्या समझा रहे हैं। मैंने एक बार ज़िक्र किया था कि चूंकि 97% या 98% ईरानी मुसलमान हैं, मैंने अभी के लिए अपने हवाले रेफरेंसेस कुरान और मुसलमानों की मुकद्दस किताब पर आधारित रखे हैं ईसाइयत के बारे में। इसका एक कारण है क्योंकि अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूं, मतलब तीनों नज़रियों से बात करूं, तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी और यह विषय को उलझा देगी। मिसाल के तौर पर ईसाई कहते हैं ईसा जीसस ने पालने क्रेडल में बात नहीं की थी, जबकि मुसलमान कहते हैं उन्होंने की थी। एक यहूदी ज्यू शायद कहेगा कि सुलेमान सोलोमन एक काफिर था, गुनाहगार था, जबकि दूसरा कहेगा नहीं, वह गुनाहगार नहीं था। फिर हम शरिया रिलीजियस लॉ और अलग अलग विचारधाराओं में फंस जाएंगे। इस वजह से मेरा तरीका यह है कि मैं इस्लाम के नज़रिए से ज़्यादा बात करूं, मतलब इस्लाम के तमाम आइडियाज़ तुम्हें समझाऊं। इस वजह से भी, और क्योंकि 90% ईरानी मुसलमान हैं, लेकिन कुछ सवाल जो पूछे गए हैं वह सभी धर्मों पर लागू होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस मसले को एक बहुत साधारण उदाहरण से समझाता हूँ। क्या ईसा जीसस ऑर्थोडॉक्स थे, प्रोटेस्टेंट थे या कैथोलिक थे? इससे पता चलता है कि ईसा न कैथोलिक थे, न प्रोटेस्टेंट, न ऑर्थोडॉक्स। जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह क्या वह सुन्नी थे या शिया? क्या वह हम्बली शफी मुतज़िला या मालिकी थे? वह क्या थे? तो ये दिखाता है कि न मालिकी, न हम्बली, न शिया, न सुन्नी का मोहम्मद से कोई लेना देना है। पिछले कुछ हफ्तों में हमारा सवाल, जिसका हम धीरे धीरे जवाब दे रहे हैं, बहुत साफ रहा है। मुझे लगता है अगले 2-3 हफ्तों में हम मौलवी की कविता के साथ आगे बढ़ेंगे, और फिर हम मौलवी की एक और कविता समझाएंगे, एक अलग समंदर, एक अलग गहराई, एक अलग सेंटीमीटर के साथ। खैर, हमारा सवाल वाकई बहुत आसान था। एक पारसी ज़ोरोएस्ट्रियन इस सवाल का जवाब दे सकता है। जनाब ज़रातुस्त्र का धर्म क्या था, वह इसका जवाब दे सकते हैं। एक यहूदी जवाब दे सकता है, एक हिंदू, एक बौद्ध। इसलिए इस्लाम के 50 फिरकों सेक्ट्स का मोहम्मद से कोई लेना देना नहीं है, ईसाइयत के 50 फिरकों का ईसा से कोई लेना देना नहीं है। यहूदियों के 50 फिरकों का भी मूसा से कोई लेना देना नहीं है। ये वह तर्क रीजनिंग है जो मैंने बहुत साफ तौर पर समझाया है, वरना शिया, सुन्नी, ईसाई, यहूदी और पारसी धर्मों के ठेकेदारों, क्लर्जी को हमें बताना पड़ता कि उनके फाउंडर का धर्म क्या था। ये बहुत आसान है, वह बस कह सकते थे, सर वह ऑर्थोडॉक्स थे, और हम चुप हो जाते। दूसरा सवाल ईसा के बारे में, क्योंकि करीब 7 या 8 ईसाइयों ने मुझे मैसेज किया पूछते हुए, सर जब आप ईसा के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आपका सवाल हम पर भी लागू होता है? हाँ, यह सवाल बिल्कुल तुम्हारे लिए है। हमारा सवाल यह है, इस ईसा का धर्म क्या था जिसे तुम खुदा का बेटा या खुद खुदा कहते हो और हम उसका सम्मान करते हैं? उसका बाप खुदा है या होली स्पिरिट? उसकी माँ मरियम है? इस आदमी का धर्म क्या था? ऐसा क्या था कि 27 साल की उम्र में मेरे नज़रिए से और 30 साल की उम्र में ईसाई नज़रिए से वह मजबूर हो जाता है यहया जॉन द बैप्टिस्ट के पास जाने के लिए? या तो उसका अपना धर्म सवालों के घेरे में था, या वह कुछ ढूंढ रहा था, या यहया का धर्म कोई नया धर्म था। हुसैनी के नज़रिए से मौलवी का मानना है कि यहया एक सूफी है, उसका धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। वह शख्स जिसके पास मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह जाते हैं, जो उन्हें गार हिरा, केव ऑफ हिरा जाने को कहता है, वह एक सूफी है। और आदरणीय मूसा के ससुर शोएब, वह भी एक सूफी हैं। इन लोगों का धर्म क्या था? इनके विचार क्या थे? हम इस बात का खुलासा कर रहे हैं। 15 या 20 साल पहले मैं एक किताब छपवाने वाला था जिसका टाइटल था गॉड इज़ नॉट अ रियल बीइंग। इंशाल्लाह अगर मुझे कोई इन्वेस्टर मिला तो मैं ये किताब जल्द ही पब्लिश करूँगा। उस किताब में मैंने 2 विषयों पर बात की थी, अब उसमें और भी बहुत कुछ है, जिनमें से एक धर्मों के खुदा के बारे में था। मैंने समझाया कि एक ऐसा खुदा है जिसकी धर्मों को भनक तक नहीं लगी है, और एक ऐसा खुदा है जिसे दुनिया के 99% लोग नहीं जानते। उस किताब में मैंने वर्णन किया कि एक खुदा मौजूद है। मैंने वहां कहा कि सर एक खुदा है जो वैज्ञानिक, साइंटिफिक है, रहस्यमयी, मिस्टिकल है, वह सूफिज्म है, और उसका उस खुदा से कोई लेना देना नहीं है जो धर्म दुनिया को इंट्रोड्यूस कराते हैं। उस किताब में मैंने एक और पॉइंट रखा था जो बहुत ज़रूरी है, एक थ्योरी जो मैंने दी थी जो शायद दुनिया के 99% लोगों के नज़रिए से अलग है। उस किताब में मैंने समझाया कि बच्चा माँ बाप को चुनता है, माँ बाप बच्चे को नहीं। अब हम इसे जोड़ना चाहते हैं क्योंकि हमें रूह के बारे में बात करनी है, इसे समझाना ज़रूरी है। मतलब उस किताब में मैंने कहा कि माँ बाप बस एक दूसरे को ढूंढकर बच्चा पैदा नहीं कर लेते, एक बच्चे को पैदा होना होता है और वह तुम पर दबाव, प्रेशर डालता है कि तुम इस लड़की के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनो, कि वह दूसरी तुम्हारी बीवी बने ताकि तुम बच्चा पैदा कर सको। मतलब बच्चा DNA में प्रेशर डाल रहा है ताकि माँ बाप साथ आएं। यह बिल्कुल ही अलग विषय है, गौर से सुनिए। तुम कहाँ आए हो? किस मकसद के लिए आ रहे थे? आखिर तुम कहाँ जा रहे हो बिना मुझे मेरा घर दिखाए? आप देखिए, धर्म, मैं इसे इतना सरल तरीके से समझाना चाहता हूँ, धर्म हुसैनी के पैदा होने के बाद की बात करते हैं। अब हुसैनी के पैदा होने के बाद वह किसका बच्चा था? उसके मम्मी पापा कौन थे? और उसका धर्म क्या था? उसकी कार क्या थी? उसकी मौसी कौन थी? उसका चाचा कौन था? ये सब हुसैनी के बाद की बात है। लेकिन हुसैनी एक ऐसे धर्म की बात कर रहा है जो उसकी माँ के गर्भ वोम्ब में है, क्योंकि माँ के गर्भ में बच्चे को नहीं पता होता कि उसके माँ बाप कौन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है DNA जानता है कि उसने किन माँ बाप को चुना है, लेकिन वह उनके चेहरे नहीं पहचानता। वह माँ के गर्भ की कब्र से बाहर आता है। हम कह रहे हैं कि मोहम्मद के जिब्राइल गैब्रियल को देखने से पहले वह अपनी माँ के गर्भ में थे, एक गर्भ था और मोहम्मद उस गर्भ में थे। देखो मैं कैसे पैदा हुआ, मेरे माँ और बाप ने एक दूसरे को ढूंढा, उन्होंने एक दूसरे को 2-4 पप्पियाँ और किसेस दी और मैं पैदा हो गया। नहीं, मैं 9 महीने गर्भ में था फिर मैं पैदा हुआ। मतलब मैं अपनी माँ के गर्भ की कब्र से निकला। मैं कहाँ से आया? अपनी माँ के गर्भ की कब्र से। और मुझे नहीं पता था कि मैं किसी राजा का बेटा हूँ या किसी भिखारी का। जब मैं बाहर आया मुझे एहसास हुआ कि मैं एक भिखारी हूँ। वह धर्म जिसे तुम डिफाइन करते हो वह उस पल से शुरू होता है जब मैं एक भिखारी के रूप में बाहर आया। अरे ये वाला विकलांग डिसेबल्ड क्यों है, वे वाला वैसा क्यों है? जिस धर्म की मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तुम्हारे बारे में, वह धर्म है जो मेरे पास तब है जब मैं अपनी माँ के गर्भ में हूँ। इससे पहले कि मोहम्मद जिब्राइल को देखते, उन्होंने इस मिस्टिसिज्म लेवल तक पहुँचने के लिए कुछ किया ताकि वह सीधा खुदा से बात कर सके, ताकि जिब्राइल आए या जो भी हो। यही बात मूसा के लिए है और यही ईसा के लिए, और इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन धर्म उस बारे में बात कर रहे हैं जो ईसा के खुदा को देखने के बाद हुआ, और वह कहते हैं कि यह मुद्दे हैं। आज हमें एक और छोटी सी वजह देनी है, क्या दुनिया में कभी कोई सूफी रहा है? सर ये सूफी कौन है? जब हम मिस्टिक्स मिस्टिक्स कहते हैं, जब मौलवी मिस्टिक्स कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ मौलवी कह रहे हैं, मेरे पास खुद तुम्हें सुनने वाले को देने के लिए कुछ नहीं है, मैं बस मौलवी और अत्तार के शब्दों की गूंज हूँ, मैं उनके शब्द बोल रहा हूँ। क्या यह मुमकिन है कि अत्तार, मौलवी, सनाई गजनवी, जुनैद बगदादी, क्या यह मुमकिन है कि वह सब एक ही तरह के इंसान के बारे में बात कर रहे हों जिसे वह सूफी कहते हैं? कौन है ये, कौन है ये जिसके बारे में वह इस तरह बात करते हैं? उन्हें इसमें क्या परेशानी दिखती है? इस इंसान में क्या है? ध्यान से सुनो, आखिर यह इंसान है कौन, ताकि तुम इस इंसान की ताकत को जान सको और समझ सको कि ये कौन है। मैं मुसलमानों के मुकद्दस कुरान से एक साधारण सी मिसाल दूंगा। प्यारे मुसलमान सुनने वालों, ध्यान दो, इंशा अल्लाह अगले 7 या 8 प्रोग्राम्स में मैं तौरा ओल्ड टेस्टामेंट से भी समझाऊंगा ताकि सब समझ सकें। ध्यान से सुनिए, ये समझने के लिए कि यह इंसान कौन है, हम मूसा के द्वार में जाते हैं। अब इस हकीकत को छोड़कर कि फिरौन फेरो के पास कुछ जानकारी थी, जैसे यह जानना कि उस बच्चे का बीज कब पड़ेगा जो मूसा बनेगा, जो कि गैब का इल्म, जादू टोना, भविष्यवाणी, जो चाहे कह लो, वह था। इसके अलावा ओल्ड टेस्टामेंट में एक आदमी का जिक्र है जिसका नाम बालाम बिन बेओर है। इस आदमी की दुआएं कबूल होती हैं, जो भी उसके दिमाग में आता है हो जाता है। एक वक्त पर वह मूसा को चैलेंज भी करता है, जो एक कहानी है जो मैं अगले हफ्ते सुनाऊंगा इंशा अल्लाह। लेकिन ताकि तुम समझ सको सर कि द विंची कोड कि मौलवी एक इंसान की आंखों, भौन, नाक और मुंह के बारे में बात कर रहे हैं जिसे वह सूफी कहते हैं, या मिस्टिक, या इंसान ए कामिल। यह इंसान ए कामिल कौन है, या मिस्टिक कौन है, या सूफी कौन है? तुम्हें यह समझने में मदद करने के लिए मैं कुरान की एक कहानी से समझाता हूँ। मूसा के दौर में मूसा कलीमुल्लाह, मूसा ने खुदा से बात की है, वह कोहे तूर पर गए हैं, वह उलुल अज़्म, बुलंद इरादे वाले पैगंबर हैं। सभी धर्म निश्चित रूप से उन्हें मानते हैं। एक यहूदी उनसे पहले के सबको मानता है, एक ईसाई उनसे पहले के सबको मानता है, और एक मुसलमान भी वही करता है। सभी धर्म ऐसे ही हैं, यहाँ तक कि बौद्ध धर्म भी। सभी धर्मों में ये कॉमन ग्राउंड है। ध्यान दीजिए, मूसा के वक़्त में ये कहानी जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वह मौलवी में भी है, मतलब मौलवी ने इसे खूबसूरती से समझाया है। एक आदमी रहता था, और ये अजीब है, बिना किसी और तमहीद प्रीफेस के, मैं क्योंकि बहुत लोगों ने कहा है सर सोर्स सोर्स दीजिए, मुझे नहीं पता सच में, पहले तो मुझे जाकर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मिसाल के तौर पर मुझे इनमें से कई जबानी याद हैं और मैं उन्हें सुना रहा हूँ। आज मैंने कहा मैं सोर्स दूंगा ताकि वह ईरानी जो चेक करना चाहते हैं वह जाकर चेक कर सकें। प्यारे मुसलमान, कुरान के सूरह अलकहफ की आयतें 65 से 82 कहती हैं, वहाँ उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिस पर हमने अपनी तरफ से रहमत की थी, और हमने उसे अपने पास से इल्म, ज्ञान सिखाया था। यहाँ इल्म का विषय साक्षरता, लिटरेसी नहीं है, याद रखना। कोई भी चीज़ जो तुम्हारे शरीर की मदद करे, जो तुम्हारी जानकारी की मदद करे, वह साक्षरता है। इल्म, नॉलेज कुछ और है। वह कहता है और हमने उसे अपने नज़रिए से ढेर सारा इल्म सिखाया था। मूसा ने उससे कहा, क्या मैं आपके पीछे चलूं ताकि आप मुझे उसमें से कुछ सिखाएं जो आपको रुश्त और हिदायत का सिखाया गया है? मुकद्दस कुरान में बड़े बड़े राज खुलेआम फेंक दिए गए हैं। एक बड़ा पैगंबर मूसा सीधा खुदा से बात करता है। वह एक धर्म लाया है, यहूदियों के मुताबिक वह धर्म लाए और मुसलमानों के मुताबिक भी। यह आदमी इतनी शान और ताकत के साथ एक दूसरे आदमी का शागिर्द, डिसाइपल, चेला बन जाता है। मतलब मूसा गए और उन्होंने जेथ्रो शोएब को देखा, ध्यान दो ये तोरा में भी है। वह मिडियन गए, जेथ्रो को देखा और वहां अपना ईमान ताज़ा किया। द विंची कोड खुलना चाहिए, ये अभी तक नहीं खुला है क्योंकि इसे खुलने में वक्त लगता है। बहुत से लोग कहते हैं बस जल्दी बताओ यार, ये जल्दी बताओ क्या है, तुम्हें इन चीज़ों को समझना होगा। मिसाल के तौर पर मैं आऊं और तुमसे कहूं कि मैं एक अरबपति बिलियनर हूं, एक सिनेरियो में तुम कहोगे बोला था ठीक है ये बंदा ट्रंप है या वह वाला रॉकफेलर है। दूसरे सिनेरियो में रॉकफेलर आता है और मेरे पैर के अंगूठे को चूमता है और कहता है सर मेरी दौलत इस हुसैनी के सामने समंदर में एक मक्खी जैसी है। तब तुम मेरे बारे में पहले जैसा नहीं सोच सकते, तुम्हें सूफी या इंसान कामिल को समझना होगा। मैं कुरान से सबूत पेश कर रहा हूँ जिसका किसी शिया या सुन्नी के पास कोई जवाब नहीं है। वह बस कहेंगे मुझे नहीं पता। यहाँ तुम्हारे पास यहूदियों के महान पैगंबर मूसा हैं जो खुदा से बात करते हैं। इस आदमी ने फिरौन को बर्बाद कर दिया, अपनी कौम बनी इसराइल को बचाया। ठीक है, सैयद इसराइल याकूब की औलादें, वह सैयद हैं, उन्होंने इन सैयदों को लिया और बचाया, उन्होंने यह सब किया। सभी धर्मों के मुताबिक मुसलमान, ईसाई, यहूदी वगैरह वह मानते हैं, ये कम से कम यकीन है कि वह एक बड़े पैगंबर हैं, इतिहास के दिग्गजों में से एक। कहानी तब शुरू होती है जब मूसा खुदा की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं ऐ खुदा क्या इस दुनिया में मुझसे बेहतर कोई है, और खुदा की मुस्कुराहट उन्हें दंग और लाजवाब कर देती है। वह एक ऐसी मुस्कुराहट देते हैं जो धरती हिला देने वाली होती है, और मुसलमानों के मुकद्दस कुरान में वह आधिकारिक तौर पर उन्हें बताते हैं मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा ताकि तुम सीख सको। सर, प्यारे सुनने वाले, यह कौन हो सकता है भला? मूसा, जो खुदा के इतने करीब रहे हैं कि बस एक कंबल में साथ होने की कसर बाकी थी, उन्होंने उसे चूमा है, इश्क लड़ाया है, अपनी लाठी फेंकी और वह अजदहा ड्रैगन बन गई, उन्होंने फिरौन की वाट लगा दी, उन्होंने वह सब किया है जो तुम सोच सकते हो। अगर तुम उनके चमत्कारों के बारे में पढ़ना चाहते हो तो जाओ न्यू और ओल्ड टेस्टामेंट्स पढ़ो, वह कई जगह हैं। जाओ उन्हें कुरान में पढ़ो, हर जगह लिखा है कि वह बड़े 30 मार खां बिग शॉट्स में से हैं। खुदा मूसा से कहता है तुम्हें कुछ समझने के लिए तुम्हें फलाना के पास जाना होगा, अगर तुम कुछ समझना चाहते हो तुम्हें उसके पास जाना होगा। मूसा जाते हैं और कहानी को छोटा करते हुए वह उस शख्स को ढूंढ लेते हैं। पहला जुमला जो ये सूफी, ये मिस्टिक, ये इंसान कामिल मूसा से कहता है वह हैरान कर देने वाला है। वह कहता है तुम कभी नहीं, ध्यान से सुनो, कभी नहीं शब्द बातचीत में एक बहुत बड़ी बेइज्जती है। देखो ये अलग बात है अगर मैं यहाँ ऑक्सफोर्ड में अपने प्रोफेसर के पास जाऊँ और कहूँ प्रोफेसर मैं आपसे सीखने आया हूँ, और वह कहे तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ये उससे बहुत अलग है कि वह कहे खैर पढ़ाई करो, शायद तुम कहीं पहुँच जाओगे, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसका शब्द एक पत्थर जैसा है और उसके अंदर एक गहरा नुक्ता है।
वह कहता है तुम मेरे साथ कभी सब्र नहीं कर सकते। मतलब उनकी पहली मुलाकात में वह मूसा से कहता है तुम मेरे साथ चल नहीं सकते, तुम मेरा साथ नहीं दे सकते, जो मैं समझता हूँ तुम बिल्कुल नहीं समझ सकते। कुरान सूरह अल-कहफ आयतें 65-82। और तुम उस चीज़ पर कैसे सब्र कर सकते हो जिससे तुमने इल्म ज्ञान में घेरा ही नहीं है? और ताकि मूसा नाराज़ ना हो, ध्यान दो ताकि मूसा नाराज़ ना हो, यार एक बड़ा पैगंबर गया है और बोला है सर मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। और वह आदमी मूसा से कहता है तुम मेरे बाजू में रहकर कुछ नहीं समझ सकते। और ताकि मूसा नाराज ना हो वह कहता है मेरे प्यारे मूसा, मेरे सुंदर, यह इसलिए है क्योंकि तुम इसके अंदरूनी राजों से वाकिफ नहीं हो और तुम इसका कोड बिल्कुल नहीं जानते। तुम कैसे उम्मीद करते हो कि तुम सब्र करोगे और समझोगे? तुम सब्र नहीं कर सकते क्योंकि तुम कोड्स नहीं समझते। तो यह आदमी मूसा से राजों की बात कर रहा है जो खुदा के इतने करीब हैं कि वह सुबह दोपहर और रात चूमते हैं, और वह उन्हें कहता है तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारी राय में मिस्टर शिया और सुन्नी मुल्ला,
क्या तुम्हें यह विषय लोगों के लिए खोलना नहीं चाहिए? एक बार के लिए 1400 साल बाद क्या एक हुसैनी को तुम्हें चैलेंज नहीं करना चाहिए और पूछना नहीं चाहिए, ये आदमी कौन है? क्या ये मुमकिन है कि एक बड़े पैगंबर के साथ एक ऐसा आदमी रहता हो जिसे मूसा ढूंढ नहीं पाते, और जब मूसा उसे ढूंढ लेते हैं वह उसे समझ नहीं पाते, वह उसे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते? ये कुरान की आयतें हैं, कौन है ये? कौन है ये जिसके लिए पूरी दुनिया पागल है? कौन है ये शख्स जो मौलवी को मौलवी बनाता है, जो शम्स को भेजता है और उनकी दुनिया उलट पुलट कर देता है? कौन है ये शख्स जिसके बारे में मौलवी हज़ारों शेर लिखते हैं, वह बूढ़ा आदमी? जिस तरह मौलवी शायरी लिखते हैं वह ऐसी है कि अगर ये आजकल के नए लोग कहें कि वह होमोसेक्सुअल समलैंगिक थे, क्योंकि वह दावा करते हैं कि मौलवी होमोसेक्सुअल थे, ये कैसी दुनिया में हम रहते हैं? कौन सा होमोसेक्सुअल मौलवी के चार शेर सुना सकता है? पहले मुझे एक होमोसेक्सुअल ढूंढ के दिखाओ जो पन्ने से मौलवी के चार शेर पढ़ भी सके। ये वह बेहुदा मजाक हैं जो ये करते हैं। जब मौलवी का नाम लिया जाए तुम्हें खड़े हो जाना चाहिए, गधे। अब, उसने कहा, तुम यह कभी नहीं कर पाओगे। मूसा ने कहा, अगर खुदा ने चाहा, हाँ हाँ हाँ। कुरान कायनात को चैलेंज करता है, और इस हकीकत के अलावा कि शिया और सुन्नी क्लर्जी यह 5 लाख से 10 लाख मुल्ला अपनी तमाम मस्जिदों के साथ, उनके पास हुसैनी के लिए कोई जवाब नहीं होगा। खुदा बड़ी बारीकी से एक और सवाल खड़ा करता है जिसका जवाब और भी बुरा है। मूसा कहते हैं, अगर खुदा ने चाहा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर खुदा चाहेगा वह इस आदमी पर तंज जैब कस रहे हैं। अब कुछ कहते हैं यह आदमी खिज्र था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका नाम क्या था। कुरान में लिखा है वह सालिहीन नेक लोगों में से एक था। तुम उसे खिज्र बुला सकते हो, तुम उसे हुसैनी बुला सकते हो। मूसा कहते हैं, अगर खुदा ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। वह ताना मार रहे हैं, वह कह रहे हैं, जो आप यकीन रखिए कि चूंकि मैंने खुदा से मांगा है कि मैं आकर आपका स्टूडेंट बनूं, वह खुद मेरी मदद करेगा और मैं किसी मामले में आपकी हुक्मदूली नहीं करूंगा। खिज्र या वह सूफी कहता है, तो अगर तुम्हें मेरे पीछे चलना है तो मुझसे किसी चीज़ के बारे में मत पूछना जब तक मैं खुद उसका जिक्र ना करूं। तुम्हें सवाल करने का कोई हक नहीं है। ताकत देखो, सोचो कोई ईसा के पास आए और कहे, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम बोलोगे नहीं। अपनी सांस थाम लो ताकि तुम उनसे सुन सको जो ज़िंदगी फूंकते हैं, वह जो न ज़ुबान पर आता है न ही बयान में। ऐसा लगता है जैसे खिज्र यह शब्द किससे कह रहा है? मूसा से। अब तुम समझे मैंने इसका जिक्र क्यों किया। अपनी सांस थाम लो ताकि तुम उस सूरज से सुन सको, वह जो न किताबों में आता है न ही खिताब में। मूसा, जो चीज़ें मैं आज तुम्हें समझाना चाहता हूँ वह किताबों में भी नहीं है यार। अपनी सांस थाम लो ताकि रूह तुम्हारे लिए सांस ले। ज़रा सोचो, तुम एक मुसलमान सुनने वाले जिनमें से कई ने अब कुरान खोल लिया है और उसे देख रहे हैं, सोचो इस बारे में, क्या यह मुमकिन है कि इतनी शान वाला कोई शख्स जाए और एक ऐसे आदमी का स्टूडेंट बन जाए जो उसकी इतनी बेइज्जती करता है? क्या इस आदमी के ज्ञान और आध्यात्मिक रास्ते, तरीकत का स्तर, लेवल इस हद तक पहुंच गया है कि मूसा, इस कहानी में जो मैंने तुम्हें सुनाई, मूसा बिल्कुल एतराज़ नहीं करते? मतलब वह इसे बेइज्जती नहीं मानते, वह मानते हैं कि वह इस आदमी के मुकाबले कुछ नहीं जानते। यह कुरान की आयतें हैं प्यारे सुनने वाले, यह किसी ऐसी किताब से नहीं है जो कहती है फलाना ने कहा, यह तेहरान के किसी प्रोफेसर की लिखी किताब से नहीं है, यह किसी रिलीजियंस न्यूज़ जैसी वेबसाइट और उस तरह की बकवास से नहीं है यार, यह उन किताबों से नहीं है जो इन 1400 सालों में लिखी गई हैं, यह कुरान से है प्यारे सुनने वाले। क्या तुम ध्यान दे रहे हो मिस्टर मुस्लिम? मतलब मूसा को समझ नहीं आ रहा तो तू गधे, जो वेबसाइट खोलता है और बकवास करता है तुझे क्या खाक समझ आएगा? तू सूफी को समझना चाहता है? तू क्या समझना चाहता है बेवकूफ़? मूसा नहीं समझते, वह आदमी उन्हें कहता है तुम मेरे साथ 2 कदम नहीं चल सकते। तुम कुछ नहीं समझते मूसा, कुछ नहीं। क्यों? उन कोड्स और राजों की वजह से जो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ तुम कुछ नहीं समझते, और फिर 4-2 कौड़ी के मुल्ला बैठ कर बकवास करते हैं, अकग्ल के अंधे। वह आदमी खिज्र मूसा को कहता है तुम कुछ नहीं समझते, फिर तू तू गधे, मेरे लिए वेबसाइट खोलता है, बकवास करता है और वहाँ बैठकर मौलवी की व्याख्या करता है। अगर तूने एक इंसान एक आमिल देख लिया तो तेरी पैंट में निकल जाएगी बच्चे, तुम कुछ नहीं समझते। तुम्हारे लिए पीक पीक तो मूसा के लेवल तक पहुँचना होगा। हुसैनी की मौत के 5 अरब साल बाद तुम वहाँ पहुँचोगे। फिर तू इडियट आकर मिस्टिसिज्म के बारे में थ्योरी देता है। अगर मैं तुझे टॉयलेट में डालकर बाहर निकालूँ, तुझे कुरान से भी परेशानी है।
प्यारे सुनने वाले, मैं मुकद्दस कुरान से बोल रहा हूँ, आयतें 65 से 80 कुछ तक। वह उसे कहता है, तुम मेरे साथ चलोगे और तुम बोलोगे नहीं मिस्टर मूसा। कहानी आगे बढ़ती है। वह 3 काम करता है। पहली बार मिस्टर खिज्र या जो भी वह आदमी है, मैं उसे सूफी कहता हूँ तो इसका ईसाइत या इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। मैं समझा रहा हूँ कि एक सूफी 1 लाख साल पुराना हो सकता है। एक ज़रूरी पॉइंट, मिस्टर सूफी और मूसा एक नाव बोट पर चढ़ते हैं। मसला तब शुरू होता है जब वह नदी पार करना चाहते हैं। वह इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करते हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं। चाहे वह कितना भी इंतज़ार करें, कोई उन्हें लिफ्ट नहीं देता, कोई उन्हें अपनी नाव पर नहीं आने देता। वह 3-4 दिन तक फंसे रहते हैं, भूखे और लाचार। 3-4 दिन बाद एक खूबसूरत नौजवान आता है और कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? वह कहते हैं, हम पानी के उस पार जाना चाहते हैं। वह कहता है, ओह, तुम्हारे चेहरों से साफ है कि तुम अच्छे लोग हो। खिज्र कहता है, हाँ, हम बुरे नहीं हैं। वह पूछता है, वह कौन है? वह कहता है, सर, यह आदमी एक पैगंबर है, एक बड़ा पैगंबर। उसका खुदा के साथ एक सीक्रेट चुपचाप रिश्ता है। वह कहता है, ठीक है। फिर वह इन दोनों को अपनी नाव पर लिफ्ट देता है। रास्ते में यह नौजवान उन्हें खाना देता है और उन पर मेहरबानी करता है। ठीक उसी वक़्त मिस्टर खिज्र मूसा की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, मूसा। वह कहते हैं, जी, इधर आओ। मूसा कहते हैं, जी मेरे आका, नीचे चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। क्या है? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मिस्टर खिज्र एक भारी भरकम कील नेल निकालते हैं, उसे नाव के फर्श पर रखते हैं और मूसा से कहते हैं, वह हथौड़ा लो और इसे मारो, एक सुराख कर दो। मूसा कहते हैं, मालिक, 3 दिन से हम यहाँ नदी पार करने का इंतज़ार कर रहे थे और किसी ने हमें भाव नहीं दिया। मेरे बादशाह, इस आदमी ने हम पर इतनी मेहरबानी दिखाई, हमें पानी दिया, खाना दिया, उसने हमें मुफ्त में सवारी दी और हमें उस पार ले जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम इसे डुबो दें? जैसे हमारे दोस्त कहेंगे, हमें छेद करना चाहिए? मास्टर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? हम यहाँ 3.5 दिन से फंसे हुए थे, हम इस इंसान की नाव को नुकसान क्यों पहुँचाए? मूसा कहते हैं, मैं आयत पढ़ रहा हूँ, क्या आपने इसे इसलिए फाड़ा ताकि इसके लोगों को डुबो सकें? सच में आपने एक भयानक काम किया है, मतलब आप इसमें छेद कर रहे हैं ताकि ऐसा वैसा हो, और आपने कितना बुरा काम किया है। खिज्र कहता है, मैं शर्मिंदा हूँ मिस्टर मूसा, मैंने तुमसे कहा था बोलना मत। अपनी सांस थाम लो ताकि तुम उनसे सुन सको जो जिंदगी फूंकते हैं, वह जो न जुबान पर आता है न ही बयान में। लेकिन तुमने जल्दबाजी की मेरे प्यारे, जाओ अपने खुदा के पास मेरी जान, जाओ अपनी पैगंबरी करो, जाओ अपना काम करो, जाओ। मूसा को याद आया कि उन्होंने उसे न बोलने का वादा किया था। उन्होंने कहा, सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे सच में गलती हो गई, मैं भटक गया था, शैतान ने मुझे बहका दिया। वह आदमी मूसा से कहता है, मैं तुम्हारी माफ़ी कबूल नहीं करता, जाओ मेरे प्यारे, जाओ पैगंबर बनो, अपनी पैगंबरी से चिपके रहो। तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, तुम मज़े कर रहे हो, तुम्हारे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तुम्हारा सूफिज्म से क्या लेना देना? तुम्हें आध्यात्मिक रास्ते, तरीकत के नज़रिए के पीछे से कुछ समझने की क्या ज़रूरत है? यह शिया रिलीजियस लॉ जिसका तुम ऐलान कर रहे हो, खुदा तुमसे प्यार करता है और इंशाअल्लाह तुम जन्नत में होगे और तुम्हारे पास बहुत अच्छा वक़्त होगा। वहाँ हूरें हैं, इतनी सुंदर हूरें, बहुत खूबसूरत हैं, बाग बगीचे और वह सब। मूसा ने कहा, नहीं, मुझे हूरें और जन्नत नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए मालिक, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ सीखने के लिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। खिज्र ने कहता है, अगर तुमने अगली बार सवाल पूछा तो मैं तुम्हें अलविदा कह दूंगा मूसा। दूसरी बार भी वही होता है। 7 दिन तक खिज्र मूसा को रेगिस्तान में पैदल चलाते हैं बिना खाने के। वह बस चलते हैं भूखे, बहुत भूखे। मैं कहानी बहुत मुख्तसर ब्रीफ में सुना रहा हूँ,
फिर उन्हें एक बहुत शरीफ, अच्छा और दिलदार परिवार मिलता है। वह उन्हें देखता है, एक बूढ़ा आदमी उन्हें अपने घर ले जाता है, उन्हें खाना, चाय, फल, स्ट्रॉबेरी, खजूर देता है। वह उन्हें और चाय देता है, फिर और चाय। वह उनके पैर चूमता है। वह परिवार खिज्र के पैर चूमता है और मूसा के पैर। वह पूछते हैं, यह कौन है? और खिज्र कहता है, ये जनाब एक बड़े पैगंबर हैं, इनका खुदा से खुफिया रिश्ता है और यह एक बहुत ज़रूरी शख्स हैं। 2 बजे चाहे रात के हों या दोपहर के, खिज्र मूसा को बुलाता है। मूसा कहते हैं, जी? वह कहता है, चलो उस पहाड़ी के पीछे चलते हैं। मूसा कहते हैं, उस पहाड़ी के पीछे मालिक, किस लिए? वह कहता है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। इस परिवार का एक खूबसूरत बच्चा भी था। खिज्र और मूसा बाहर आते हैं। खिज्र कूदता है, बच्चे को दोनों पैरों और दोनों हाथों से पकड़ता है और उसे पहाड़ी के पीछे ले जाता है। वह अपनी पीठ के पीछे से 1-2 मीटर का चाकू निकालता है। वह मूसा की तरफ मुड़ता है और कहता है, बच्चे का मुंह और उसके हाथ पैर पकड़ो, चलो इसका सर काट देते हैं। मूसा कहते हैं, क्या इसका सर काट दें? मालिक, हमने 6 दिन से खाना नहीं खाया। हम यहाँ आए, हम बदहाल थे, कंगाल थे। हम यहाँ आए और इन लोगों ने हमें खाना खिलाया। मालिक, उन्होंने हम पर इतनी मेहरबानी दिखाई और अब आप चाहते हैं कि हम उनके बच्चे का सर काट दें। खिज्र कहता है, मैं शर्मिंदा हूँ मेरे प्यारे, मैंने तुमसे कहा था सवाल मत पूछना। तुमने द मैट्रिक्स मूवी नहीं देखी है? मूसा, तुम नहीं जानते 0 और 1 का क्या मतलब है। तुम अपने वर्चुअल वर्ल्ड में गुनाह, सिन को समझते हो, लेकिन तुम अभी भी नहीं जानते कि यह 0 और 1 मैट्रिक्स क्या है। पहली और दूसरी मैट्रिक्स मूवीज़ देखो, उन्होंने बनाई हैं और बहुत अच्छी बनाई हैं। बैठो और देखो, तब तुम देखोगे कि अगर तुम अपने दिल की आँख खोलो ताकि रूह को देख सको, तुम वह देखोगे जो गैब अनसीन है। तुम अभी भी शरिया के पीछे भाग रहे हो कि तुम्हारे चोगे रोगनाचे को टॉयलेट की किसी चीज़ ने छुआ है या नहीं, तुम्हारा ऊँट कैमल तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है या नहीं, कुत्ता नापाक है या नहीं, हमें सुअर खाना चाहिए या नहीं। चलो खाते हैं, चलो नहीं खाते, चाहे सुअर तुम्हें खाए या तुम सुअर को खाओ, इसका उतना असर नहीं पड़ता हुसैनी। जाओ मिस्टर मूसा, जाओ और अपनी पैगंबरी संभालो। ये कोई परियों की कहानी नहीं है प्यारे सुनने वाले, ये मुकद्दस कुरान की आयतें हैं। जाओ अपनी ज़िंदगी जियो मिस्टर मूसा। मूसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहते हैं, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं? वह कहता है, मैं को मेरे सुंदर मूसा, तुम जाओगे, खुदा तुमसे प्यार करता है, तुम जन्नत में जाओगे, वहाँ हूरे हैं, जन्नत में कुछ बहुत अच्छे नज़ारे हैं, तुम मूवीज़ देखोगे, तुम मज़े करोगे। मूसा रोते हैं, उनकी आँखें आंसुओं से भरी हैं। वह एक बार और माफ़ी मांगते हैं और खिज्र उन्हें कहता है, ठीक है, मैं इस बार तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन कसम से अगर तुमने एक और सवाल पूछा और फिर से बोले तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने तुमसे शुरुआत में कहा था कि अपनी पैगंबरी से चिपके रहो, तुम सूफिज्म में अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकते, ये मुश्किल है। मूसा कहते हैं, मैं समझता हूँ। तो वह आगे बढ़ते हैं। मूसा ने कहा था, आपने एक मासूम शख्स को मार दिया बिना उसके किसी को मारे। वह एक गांव में पहुंचते हैं। उस गांव में वह फिर से 8 दिनों तक भूखे रहते हैं। उनके पास खाना नहीं है, वह इधर उधर भटकते हहैं। वहां कोई नहीं है, सिर्फ 3 या 4 गलियां हैं। वहां एक घर है, वह जाते हैं और दस्तक देते हैं। वह बंदा वह खाना जो उसके कुत्ते के सामने था उनके सामने रखता है और कहता है, अपने गले के नीचे उतार लो। खिज्र कहता है, मालिक, यह आदमी एक बड़ा पैगंबर है, इसका खुदा के साथ एक सीक्रेट कनेक्शन है, आप हमें खाने के लिए थोड़ा खाना भी नहीं देंगे? वह कहता है, नहीं, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। और वह बहुत बदतमीज़ और अपमानजनक, इंसल्टिंग होता है। बारिश शुरू हो जाती है। जैसे बारिश होती है, उन लोगों के घर की दीवार जिन्होंने उनकी बेइज्जती की थी गिरने वाली होती है। खिज्र उठता है और कहता है, मुझा मूसा, मूसा कमज़ोर हैं, उन्होंने 8 दिनों से नहीं खाया है और एक कोने में गिर गए हैं, बेचारा फंस गया है। वह कहता है, जी मालिक। वह कहता है, उठो चलो इस दीवार को ठीक करते हैं। मूसा कहते हैं, क्या करें मालिक, चलो दीवार ठीक करते हैं, लोगों की दीवार गिर रही है, यह गुनाह है। वह कहता है, एक गुनाह, इन कुत्तों के पिल्लों ने हमें खाना नहीं दिया और ऊपर से उन्होंने हमारी बेइज्जती की। कम से कम उनकी घंटी बजाते हैं और उन्हें कहते हैं, अरे हमें दीवार ठीक करने के पैसे दो ताकि हम उन पैसों से कुछ खाने के लिए खरीद सकें। हाँ, यही वह जगह है जहाँ मिस्टर खिज्र कहते हैं, अलविदा अच्छे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था हम एक ही रास्ते पर नहीं चल सकते, यह मेरे कामों का राज्य था। वह उन्हें राज्य समझाता है। वह कहता है, और बदकिस्मती से यह राज्य और ज़िद, यह आध्यात्मिक रास्ते तरीकत की ज़िद है। मूसा उदास होकर उनसे अलग हो जाते हैं। इस आयत के पीछे आयत 82 में एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इस कहानी के ठीक बाद खुदा कुरान में मोहम्मद से कहता है, वह आपसे झुलकरनैन के बारे में पूछते हैं, कहो मैं तुम्हें उनकी कहानी का कुछ हिस्सा सुनाऊंगा। झुलकरनैन का जिक्र ठीक बात करने की वजह एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। झुलकरनैन एक तरह से एकेमेनिड एम्पायर के साइरस द ग्रेट हैं। उस दौर में बहुत से लोग उन्हें खिज्र दो मानते थे। खिज्र शेम के बेटे हैं जो नूह के बेटे हैं। शेम नूह के बेटे ईरानी हैं। दुनिया के 95% पैगंबर ईरानी थे उनकी वंशावली एंसेस्ट्री के हिसाब से। शेम नूह के बेटे ईरानी हैं। खिज्र साइरस के कज़न हैं। अगर झुलकरनैन साइरस एट द ग्रेट हैं, मौलवी और दूसरों ने उनके पैगंबर होने के बारे में बहुत कुछ समझाया है, लेकिन झुलकरनैन मिस्टर खिज्र के कज़न होंगे, वही आदमी जो मिस्टिसिज्म में है। शायद वह खिज्र और इस आदमी के बीच पारिवारिक रिश्ते की तरफ इशारा करना चाहता था, मतलब वह नेक बंदा। कुरान मिस्टिक नहीं कहता, वह सालिहीन नेक कहता है। उसका नाम जो भी हो वह ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि तुम समझो कि सूफ़ी क्या है, एक सूफ़ी की ताकत क्या है। मतलब एक ऐसी दुनिया में जहाँ एक बड़ा पैगंबर जिंदा है और एक धर्म इंट्रोड्यूस कर रहा है, कुरान एक ऐसे आदमी को इंट्रोड्यूस करता है जिसके लिए किसी शिया या सुन्नी के पास कोई जवाब नहीं है। तो इस कहानी के साथ मैं तुम्हें ये समझाने आया था कि सर, दुनिया में ऐसी हस्तियां हैं। इस कुरानिक आयत के मुताबिक अभी के लिए मैं मुसलमानों को समझा रहा हूँ, हालांकि तोरा इससे भरी पड़ी है, ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट्स इससे भरे पड़े हैं सर, बिल्कुल भरे हुए। ऐसी कई जगह हैं जिनके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ मैंने कुरान की सिर्फ एक आयत से समझाया है। तो हम निष्कर्ष कंक्लूजन निकालते हैं मिस्टर मुस्लिम कि मूसा के धर्म के साथ साथ एक आदमी मौजूद है जो पैगंबर नहीं है। तो वह कौन है? इस मिस्टर खिज्र या इस आदमी का धर्म क्या है जो खुदा के नेक बंदों में से एक है? इस आदमी का धर्म क्या है? यह आदमी पैगंबर क्यों नहीं बना? यह दिखाता है कि शायद ऐसे बहुत से हों जो पैगंबर नहीं बनना चाहते, या क्या? तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। अगर वह मूसा से इतना ऊंचा है तो वह पैगंबर क्यों नहीं बना? क्या पैगंबरी मैनेजमेंट की तरह है? मतलब क्या सैमसंग का सीईओ वह आदमी है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अलग है? क्या दुनिया में कोई बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है? क्या फ्रीमेसनरी जैसी कोई चीज़ सही है? क्या सूफिज्म का धर्म से कोई लेना देना है? सबूत यही है। अगर धर्म को मिस्टिसिज्म और सूफिज्म की शाखा नहीं होना था, मतलब अगर सूफिज्म धर्म की एक शाखा होती, तुम्हारी राय में क्या खिज्र को ये चीज़ें कहने और यह बेइज्जती करने के बजाय मूसा की पैंट का पोंचा कफ पकड़कर उसे चूमकर उनके धर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाना चाहिए था? और उस वक्त धर्म का खुदा मूसा के नाम पर जाता है और उन्हें इस आदमी से जोड़ता है। और यह वह कहानी थी जो मैंने पिछले हफ्ते सुनाने का वादा किया था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगले हफ्ते मैं मौलवी का द विंची कोट और भी खोलूँगा। अपनी सांस थाम लो ताकि नूह तुम्हारे लिए सांस ले। मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी बल्खी खुरासानी